पृष्ठ संख्या 136। क्या गांधी अति मानव थे? कुछ लोगों का यह विचार है कि गांधी अति मानव थे। उनके लिए जो साध्य था, दूसरों के लिए वह संभव नहीं। किंतु गांधी ने इस बात को कभी नहीं माना। वे अक्सर यही कहा करते थे कि मैं राष्ट्र के सम्मुख वे ही कार्यक्रम रखता हूँ जिन्हें देश का औसत नागरिक भी पूरा कर सकता है, बशर्ते उसमें इच्छा और लगन हो। अपने को एक अपवाद महात्मा मानने वाली प्रवृत्ति का वे विरोध करते थे। 1942 में वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें मौलाना आज़ाद ने गांधी की अहिंसा की सराहना करते हुए कहा, ऐसी अहिंसा महात्माओं का आभूषण है, पर इसका पालन साधारण जनता के लिए संभव नहीं। किंतु गांधी ने मौलाना आज़ाद के इस कथन को नहीं माना और कहा कि यदि ऐसी बात होती तो पिछले 20 वर्षों में साथियों के साथ मैं काम न कर पाता। अहिंसा मेरे लिए विश्वास की वस्तु है, मेरा प्राण है। कांग्रेस के सामने मैंने उसे एक हथियार के रूप में रखा है जिसका प्रयोग राजनीतिक प्रश्नों को हल करने के लिए किया जा सकता है। हो सकता है कि यह एक नया तरीका हो, पर केवल इसी से इसकी राजनीतिक उपयोगिता कम नहीं हो जाती। गांधी ने बताया कि जब भी ऐसे सभी वैधानिक उपाय जिनका उपयोग आज कांग्रेस भारत में कर रही है बेकार सिद्ध हो गए, तो सर्वप्रथम मैंने इस अस्त्र का उपयोग किया था। दक्षिण अफ्रीका में जिस कार्य के लिए इसका प्रयोग किया गया था, वह विशुद्ध राजनीतिक ही था। गांधी का कहना था, जिन अनेक उपायों का उपयोग मैंने दक्षिण अफ्रीका में किया, वे किसी स्वप्न दृष्टा की उड़ान न थे। मैंने उन्हीं उपायों से काम लिया था जिनका कोई भी व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ किसी भी मसले को हल करने में प्रयोग करता। यह एक राजनीतिक उपाय है, इसलिए जरूरत पड़ने पर यह बदला भी जा सकता है। पृष्ठ संख्या 137। अहिंसा से अच्छा कोई दूसरा उपाय हाथ लग जाए तो इसे छोड़ भी दिया जा सकता है। इसलिए आज यदि मैं आपसे कहता हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में हमें नीति न बदलनी चाहिए, तो राजनीतिक सूझबूझ की बात कहता हूँ। इसी में राजनीतिक दूरदर्शिता है। हमें इस नीति से फायदा हुआ है, इससे हमने स्वतंत्रता की कई मंजिलें पार कर ली हैं। अतः एक राजनीतिक की हैसियत से ही मैं आपको राय देता हूँ कि इस नीति का परित्याग कर हम भारी भूल करेंगे। यदि मैंने पिछले दिनों में कांग्रेस का नेतृत्व किया है, तो अपनी राजनीतिक योग्यता के बल पर ही मेरे उपाय नए हैं। इसी कारण उन्हें धार्मिकता की सीमा में ढकेल देना उचित नहीं होगा। क्या गांधी तानाशाहों की तरह जिद्दी थे? पश्चिमी समाज में हाल के वर्षों में गांधी के दो रूपों को पेश किया गया। एक तो उनका सकारात्मक पक्ष है जो हमें 18 बरों की फिल्म गांधी में देखते हैं। दूसरा पक्ष गांधी के तमाम कर्मों एवं सिद्धांतों में बुराइयां ढूंढकर पेश करता है। ऐसे ही एक लेखक रिचर्ड ग्रेनियर हैं जिन्होंने अपनी हाल में प्रकाशित पुस्तक कैप्चरिंग द कल्चर में गांधी की बुराइयां पेश की हैं। ग्रेनियर के अनुसार कालावधि में गांधी की भंगिमा बदलती रही है। उनकी अहिंसा एक तरह की क्रूरता भरी थी। वे तानाशाहों की तरह जिद्दी थे। वे अपने निष्कलुष छवि बनाए रखने के वास्ते स्वजनों को भी बलि चढ़ा देने से नहीं झिझकते थे। ग्रेनियर ने आगे लिखा है कि व्यक्ति जितना महान उद्देश्य लेकर चलता है, उसी अनुपात में वह संकीर्ण और ठोस भी होता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम के गायन करने वाले गांधी जी मरते समय हे राम बोल ही गए। गांधी जी का अहिंसा आंदोलन हिंसा की नींव पर खड़ा है। उनका करो या मरो का नारा आक्रामक और हिंसालु अधिक लगता है, अहिंसात्मक कम। ग्रेनियर का कहना है कि गांधी जी ने पिता की मृत्यु के बाद संयम का व्रत लिया था। स्वयं लिया तो ठीक, पुत्रों को भी विवश किया। अपने जीवन में गांधी अपनी पत्नी और पुत्रों के प्रति बेहद क्रूर थे। पुत्र हरि ने जब संयम के खिलाफ विद्रोह किया, तो गांधी ने उसे घर से निकाल दिया। हरिलाल भी क्षुब्ध होकर मांसाहारी हो गया और मुसलमान भी। कुंठाग्रस्त हरिलाल ने इतनी शराब पीनी शुरू की सन 1948 में उसकी मृत्यु हो गई। ग्रेनियर का कहना है कि गांधी को अपनी छवि की फिक्र थी, इसके लिए उन्होंने यंग इंडिया में लिखा, लोग भले भी हुआ करते हैं मगर संतान भी वैसी ही हो, यह आवश्यक नहीं। पृष्ठ संख्या 138। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि ग्रेनियर ने पूर्वाग्रह से कुंठित होकर गांधी पर जो आक्षेप लगाए उससे ऐसा नहीं लगता कि उसने वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया हो। सुशीला कौशिक के अनुसार गांधी ने जनसाधारण और जन आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा तथा सत्याग्रह का एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिससे जनसाधारण राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जागरूक हो सके तथा मजदूर, किसान, पूंजीपति, व्यापारी, विद्यार्थी, वकील तथा निम्न जातियां आदि सभी तरह के लोग आंदोलन में भाग ले सकें। अपनी विचारधारा की सीमाओं, खामियों तथा मजबूरियों के बावजूद गांधी ने पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन को जनसाधारण का बहुवर्गीय आधार प्रदान किया। लेकिन इन सब के बावजूद गांधी के सत्याग्रह संघर्ष की कुछ सीमाएं भी थीं। जैसे क, गांधी ने जनता को केवल एक निश्चित सीमा तक ही राजनीतिक बनाया। देश के काफ़ी हिस्से के गरीब किसानों, खेतिहर मजदूरों और जनसाधारण को राजनीतिक प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं लगाया तथा राष्ट्रीय आंदोलन के अंत तक वे राष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल अनभिज्ञ रहे। परिणाम स्वरूप 1947 में राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा सामाजिक आधार सशक्त नहीं था। ख, हालांकि जनसाधारण ने प्रदर्शनों, हड़तालों, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तद्यपि उसे राजनीतिक दृष्टिकोण से संगठित नहीं किया गया। आम जनता कांग्रेस संगठन के ढांचे से बाहर ही रही। ग, गांधी के जन कार्यों के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन शिक्षित वर्ग तथा आम जनता के बीच में खाई बराबर बनी रही तथा घ, जनसाधारण की राजनीतिक गतिविधियां ऊपर से पूरी तरह नियंत्रित रहती थीं। जनता को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में कभी नहीं उभरने दिया गया। किसी भी राजनीतिक निर्णय में उसकी हिस्सेदारी का सवाल कभी नहीं उठाया गया। जनता अधिकतर निष्क्रिय रही। इसकी राजनीतिक गतिविधियां मध्य वर्ग के नेताओं तथा पूंजीवादी सामाजिक विकास की सीमाओं के अधीनस्थ रही। जनता द्वारा आंदोलन के प्रवाह को प्रभावित करने के किसी भी माध्यम का पूर्ण अभाव था। पृष्ठ संख्या 139। लेकिन वास्तव में आम जनता अर्थात किसान और मजदूर का राजनीति में प्रवेश गांधी युग में ही संभव हुआ। गांधी युग राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण काल था। राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी तथा गरमपंथी दोनों ही पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके थे, किंतु पूंजीपति वर्ग ने आर्थिक दृष्टिकोण से आंदोलन का समर्थन गांधी युग में ही शुरू किया। शहरी तथा अर्ध शहरी मध्य वर्ग भी राष्ट्रीय स्तर पर इस काल में आंदोलन में शरीक हुए। गांधी के आह्वान पर महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार समाज में विभिन्न वर्गों और समुदायों के भाग लेने के बाद ही आंदोलन का आधार विस्तृत हुआ। वर्तमान दौर में गांधी के सत्याग्रह की प्रासंगिकता। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह बहुत विचित्र दौर है। इस दौर में हम पाते हैं कि प्रायः अच्छे विचारों, उन विचारों को लाने वाले महान व्यक्तियों, उन विचारों के अनुकूल जीवन जीने वाले पुरुषों को पहले तो भुला दिया जाता है, उनकी उपेक्षा की जाती है, उनसे ठीक उल्टे रास्ते पर चलने लगते हैं। और तब फिर जब उन विचारों या व्यक्तियों से जुड़ा कोई पर्व, तिथि या दिवस आता है तो हम उसको बड़े उत्साह के साथ मना लेते हैं, और प्रायः ऐसे ही अवसरों पर हम उनकी प्रासंगिकता की बात करते हैं। इस दौर में मुख्य प्रसंग भुला दिया जाता है और प्रासंगिकता की याद की जाती है। आज जीवन के हर क्षेत्र में हमारा देश विपरीत दिशा में जा रहा है। लेकिन फिर भी गांधी को याद कर लेता है। जब हम जीवन के हर क्षेत्र में हर तरह की समस्याओं से घिरते चले जा रहे हैं, तब हमें गांधी की प्रासंगिकता की याद आने लगती है। कोई भी ठहर कर आज नहीं सोच पा रहा है कि जीवन के हर क्षेत्र में जो समस्याएं घिर आई हैं, वे भला उठी कैसे और किन कारणों से उन्होंने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं। यदि हम इन समस्याओं के बारे में सोचने का थोड़ा सा समय निकालें, तभी हमें गांधी की प्रासंगिकता समझ में आएगी। आमतौर पर तो इस दौर में निर्णय लेने वाले ज़्यादातर लोगों का समय समस्या का हल ढूंढने के बदले उससे बचते रहने, उसे टालने और यदि हाथ में पर्याप्त शक्ति हो तो उसे दबाने में बीत रहा है। देश इस समय जिन भयंकर समस्याओं से घिरा है, उन्हें मोटे तौर पर हम तीन भागों में बांट सकते हैं। क, राजनीतिक समस्याएं। ख, आर्थिक समस्याएं। ग, सामाजिक समस्याएं। ये तो तीनों समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, फिर भी इन तीनों को अलग करके भी देखा जा सकता है। राजनीतिक मोर्चे पर हम देखें तो इस समय देश के सामने एक तो अंदरूनी राजनीतिक संकट है और दूसरा बाहरी। अंदरूनी संकट के विभिन्न रूप हैं। इसमें एक तरफ पंजाब जैसा उलझा हुआ मसला है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के भीतर अपने अपने ढांचों में फैलता अविश्वास, असंतोष का वातावरण और नेतृत्व का संकट है। बाहरी संकटों में पिछले कुछ समय से देश के दक्षिणी सीमा पर तमिल समस्या उभरती रही है, साथ ही पश्चिम, उत्तर और पूर्व में हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में तनाव बढ़ा है। देश के आर्थिक मोर्चे पर देखें तो 8 पंचवर्षीय योजनाओं और देश की समृद्धि को लक्ष्य करके बनाई गई अनेक विशेष योजनाओं के बावजूद न सिर्फ गरीबी बढ़ी है, बल्कि समाज के अनेक वर्गों में दीनता भी बढ़ी है। सरकार और समाज के हर स्तर में परावलंबन अपनी चरम सीमा पर है। सामाजिक मोर्चे पर पिछले कुछ वर्षों में जैसी घुटन और परस्पर अविश्वास दिखाई दे रहा है, वह भी एक बड़े चिंता का कारण है। दहेज से लेकर सती जैसे प्रसंगों तक हम अपनी स्वयं ही कमजोरी से न तो लड़ सकते हैं और न ही उसे ठीक से पहचान सकते हैं। इन सब के लिए हमें कानूनी परिभाषाओं और कानूनी संरक्षण की जरूरत पड़ने लगी है। समाज की घुटन जाति व्यवस्था, दलीय व्यवस्था, परिवार और परिवार के हर रिश्तों में देखने को मिलती है, जहाँ हर छोटे से छोटे मतभेद आपस में बैठकर हल नहीं हो पाता। उसके लिए पुलिस बुलानी पड़ती है और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। इन तीनों क्षेत्रों में देश और समाज पर आया यह संकट ऐसा नहीं है कि यह केवल इन क्षेत्रों के कमजोर वर्गों पर ही आया संकट है। हम पाते हैं कि संकट ने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के महाबली माने गए वर्गों को भी घेर लिया है। ऐसे बहुविध संकट में गुजर रहे समाज में गांधी की प्रासंगिकता की बात दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय जैसी लगती है। हम पाते हैं कि जब गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ, तो एक तरफ के संकट के बादल छटे, देश पर सुख का सूरज चमका, तब हमें हर क्षेत्र में गांधी की अप्रासंगिकता दिखने लगी। देश के संचालन का हर निर्णय हमने उनकी ओर पीठ करके तथा पश्चिम की ओर ललचाई निगाहों से देखते हुए लिया था। पृष्ठ संख्या 141। जिसने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया था, चलना सीखते ही सबसे पहले उसे ठोकर मारकर गिराना हमने अपनी नीति बना ली। पश्चिम ढंग पर जो बड़ी बड़ी योजनाएं बनी और उनके इर्द गिर्द जो केंद्र विकसित हुए, उन्हीं को हमने नए भारत के तीर्थ स्थल मान लिया। और अब 54 साल बाद हमें पता चल रहा है कि नए तीर्थों पर लगे स्वर्ण कलश कितने नकली तथा भ्रांतिपूर्ण थे। हमारे ये नए तीर्थ न सिर्फ प्रदूषित हो चले हैं, बल्कि आसपास और दूर दूर प्रदूषण भी फैलाने लगे हैं। इन बड़ी योजनाओं ने जिन्हें उजाड़ा, उनकी दुखद स्थिति तो अलग ही है, लेकिन इनसे समाज के जिस हिस्से को लाभ पहुंचाने का दावा किया गया था, वह भी अब विवादास्पद हो चला है। देश के जिन गिने चुने क्षेत्रों में कृषि को आधुनिकतम बनाने की कोशिश की गई, आज उन्हीं क्षेत्रों के किसान सर्वाधिक असंतुष्ट हो चले हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र आदि में पिछले दिनों उभरे विभिन्न किसान आंदोलन इसी ओर संकेत करते हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में विपन्नतम खेतिहर मजदूरों के बीच उभरा असंतोष भी इसी परिस्थिति का दूसरा पहलू है। देश पर आए ऐसे संकटों में गांधी ही प्रासंगिकता खोजनी हो तो सबसे पहले यही लगता है कि गांधी आज होते तो क्या करते, के बदले हमें यह सोचना चाहिए कि आज हम इन परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें एक साफ सुथरा रास्ता दिखाया था। हर संकट से निपटने की एक दृढ़ लेकिन विनम्र सत्याग्रह की रणनीति की विरासत हमारे हाथ में सौंपी थी। हम उस हथियार की धूल को साफ करें, हृदय टटोलें और उन छोटे छोटे कामों में लग जाएं जिन्हें किए बिना कोई देश बड़ा नहीं बन सकता। अगर हम वर्तमान संकट के दौर में अपनी प्रासंगिकता भूल गए तो गांधी की प्रासंगिकता भी किसी को याद नहीं रहेगी, और यदि याद आएगी भी तो समारोहों, पर्वों और दिवसों पर जिनकी अपने आप में कोई सार्थक प्रासंगिकता नहीं है। सत्याग्रह और आज की राजनीति। सत्याग्रह दर्शन आज बदल चुका है। सत्य की ग्रहता और अस्तर का प्रतीक सत्याग्रह आज नकारात्मक तथा विध्वंसात्मक साधनों का सहारा लेना, घेराव, तोड़फोड़, उपद्रव, आंदोलन और हड़ताल की राजनीति बन गया है। उसमें विशुद्ध राष्ट्रहित गौण हो गया है। वह व्यक्तिगत, जातिगत एवं दलगत कूटनीति का केंद्र बन गया है। वर्तमान समय में सत्याग्रह का स्वरूप बदल चुका है। अन्याय और अत्याचार का विरोध करने के लिए सत्याग्रह का तो उपयोग किया जाता है, किंतु गांधी द्वारा बताए गए कठोर नियमों का पालन आमतौर पर नहीं किया जाता। किंतु इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि गांधी के सत्याग्रह का महत्व है ही नहीं। यदि गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की भेदभावपूर्ण नीति तथा सार्वजनिक ढोंग के कटु संदर्भ में सत्याग्रह न किया होता तो इसका लाभ शायद ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्राप्त होता। आज के भारत की विडंबना यह है कि विशुद्ध राष्ट्रहित की जगह देश की राजनीति में सत्ता की राजनीति का बोलबाला हो गया है। किसी भी तरह से व्यक्ति को सत्ता चाहिए। सत्य और असत्य, नेकी और बदी तथा ईमान और फरेब के बीच का परहेज नहीं रह गया है। सत्ता से कुर्सी मिलती है, इज्जत मिलती है, साथ ही पारस्परिक अविश्वास के कारण ही गुटबंदी और विघटन का जोर है, और इसी कारण राजनीति इतनी भयानक शक्ल ले रही है। गांधी का सत्याग्रह अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रारूप था। अब सत्य पर टिके रहने की नीति का स्थान कोरी अवसरवादिता ने ले लिया है। सत्य और अवसरवादिता में कभी सामंजस्य नहीं हो सकता। जहाँ अवसरवादी मनोवृत्ति होती है वहाँ भी सत्य नहीं होता। सत्य वहाँ होती है जहाँ लक्ष्य के प्रति आस्था होती है। स्वतंत्र भारत में जनता अपने आप को स्वतंत्र अवश्य कहने लगी है, किंतु वास्तविकता यह है कि इसकी बौद्धिक, नैतिक तथा मानसिक स्वतंत्रता का दमन रुका नहीं है। देश की भावी पीढ़ी इससे सर्वाधिक प्रभावित हुई है। आए दिन उत्पन्न होने वाले राजनीतिक दलों व असंतुष्ट गुटों द्वारा अपनी शतरंज की चालों में भावी पीढ़ी को ही मोहरा बनाया जा रहा है। भावी पीढ़ी की वस्तु स्थिति का बोध नहीं होता। तथ्य की भाषा तो यह है कि उसे बोध होने ही नहीं दिया जाता। यही कारण है कि देश की वह पीढ़ी जिस पर भविष्य की आशाएं संजोई जाती हैं आज दिग्भ्रमित हो रही हैं। तोड़फोड़ व उपद्रव में उसे विश्वास है। उसने केवल हड़ताल व घेराव की भाषा ही सीखी है। यह सब इसलिए होता है कि तथाकथित राजनीतिज्ञों ने सत्याग्रह के आदर्श को स्वार्थ व अवसरवादिता के रंग में रंग दिया है। गांधी ने नैतिकता को राजनीति का आधार माना था, पर आज के राजनेता धर्म की आड़ में राजनीति का खेल खेल रहे हैं। गांधी ने सत्याग्रह, अन्याय, अत्याचार व शोषण का विरोध किया था, किंतु आज इसका प्रयोग हिंसा भड़काने के लिए किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 143। गांधी ने सांप्रदायिक वैमनस्य को मिटाने के लिए सत्याग्रह किया था, किंतु आज हर छोटी बात को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयत्न होता है। आतंकवाद को आज जीवन के अन्य पहलुओं से बिल्कुल अलग करके देखा जा रहा है, और जितना उसे अलग किया जाता है उतना ही वह तरह तरह के रूप में प्रकट होकर समाज में हर प्रकार का विभत्स लाता है। आतंकवाद जनता में विश्वास और सुरक्षा के तत्वों में कमी लाता है। सामाजिक स्वास्थ्य और रचनात्मक शक्तियों की दृष्टि से ऐसी परिस्थिति अत्यंत शोचनीय है। आतंकवाद के बढ़ावे के पीछे खास तौर पर वे तत्व काम करते हैं जिनका रिश्ता सत्ता होती है। जब सत्ता व्यवहारिक और आम तौर पर मान्य स्तर को पार कर जाती है, तब वे व्यक्ति या तबके जिन्हें उस सत्ता के कांटे चुभने लगते हैं उस कुंजी की नकल करना शुरू करते हैं, क्योंकि जिन व्यक्तियों या तबकों के पास उतनी शक्ति नहीं होती जितनी कि सत्ताधारियों के पास होती है, वे खुलेआम आतंक का ऐलान व प्रयोग करने के बजाय लुके छुपे ढंग से या दूसरों के नाम से आतंक फैलाकर अपने उद्देश्यों को पाने की कोशिश करते हैं। जनता पर क्रांतिकारियों की आतंकवादी प्रवृत्ति का कितना असर हो सकता है, इसके बारे में गांधी कहते हैं, मैं जानता हूँ कि संसार सशस्त्र विद्रोह से त्रस्त हो गया है। रक्त रंजित क्रांति से कभी भी शांति एवं राजनीतिक अस्थायित्व नहीं आ सकता। यदि रक्त रंजित क्रांति सफल हो भी जाती है तो जन समुदाय के कष्ट और भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जनता के नज़दीक का शासन तो इसके बाद भी विदेशी शासन जैसा ही होगा। परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि सत्याग्रह के दर्शन तथा रणनीति के वास्तविक रूप देने के लिए एक ऐसे सत्याग्रह की आवश्यकता होगी जो आज के हालत के अनुरूप हो। सत्याग्रह को सत्याग्रह ही मनोभाव की संज्ञा से अभिहित किया जाएगा। यदि सत्याग्रह के स्थान पर सत्याग्रही मनोभाव की प्रतिष्ठा होती है तो निश्चित ही वह सत्य के प्रति न्याय होगा।